धवला पुस्तक 11 लेक्चर नंबर 14 ओ नमः सिद्धेभ्य
ओ नमः सिद्धेभ्य ओ
नमः सिद्धेभ्य ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मट्ठजनियवेयण उभयसमुत्तिन्नयेजिने नमिहुं वेयण महाहियारं विविहियारं परोवेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है इसका नाम है वेदना, और उसमें अपना ये वेदना काल विधान की बात अपनी चल रही थी। यहाँ हमने देखा था कि जो उत्कृष्ट काल नहीं है वो अनुत्कृष्ट है। पहले पहले तो पंचेंद्रियों के योग्य स्थिति बंध के अलग अलग उन्होंने विकल्प बताए। जितना बंध होता है उतना सत्य तो होता ही होता है उसी समय, तो उसके आधार से उन्होंने उत्कृष्ट तो बताया कहाँ होता है, उत्कृष्ट बंध करने वाला उसकी कंडीशंस बताई है, चारों गति के, मिथ्या दृष्टि, संगी पंचेंद्रिय, सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त, सर्व संकलेश या थोड़ा कम संकलेश, ऐसी अलग अलग बातें उन्होंने बताई थी। अब उसके बाद यानी वो अनुत्कृष्ट स्थान देखने थे हमको, उसमें एक समय कम बंद हुआ, दो समय कम बंद हुआ, तीन समय इस तरह से ध्रुव स्थिति तक बंद हुआ। ध्रुव स्थिति किसको कहा कि जितना स्थिति सत्व है उतना ही बंद हो, मिनिमम पॉसिबल संगी पंचेंद्रियों के, उतनी ध्रुव स्थिति देखी थी। तो सारे उन्होंने उसको संदृष्टि बनाई थी, उत्कृष्ट 240 से लेकर वो ध्रुव स्थिति 31 तक, ये सारे अनुत्कृष्ट के स्थान उन्होंने बताए बंध की अपेक्षा। अब कहते हैं तो बंध की अपेक्षा हुए, अब सत्व की अपेक्षा कैसे देखना कि कोई पंचेंद्रिय एकेंद्रियों में जन्म लेता है जिस किसी सत्व के साथ। हाँ, पेज नंबर अभी हम यहाँ 102 पर आ गए। तो हमने पहले बंध की अपेक्षा देखी, अभी सत्व की अपेक्षा देख रहे थे। तो पंचेंद्रिय जीव या कोई पंचेंद्रिय के बाद वो अन्य त्रसों में गया और वहां से एकेंद्रियों में गया, क्योंकि विकलेंद्रियों में वो स्थिति कांड घात नहीं होते, एकेंद्रियों में जाके होते। तो पंचेंद्रिय यथा योग्य उसने मिनिमम तक बंध की अपेक्षा अलग अलग जीवों की बात देखी, तो थोड़े अधिक सत्व के साथ वो एकेंद्रिय में उत्पन्न हुआ है, तेने किसी त्रस में से एकेंद्रिय में गया है। अब उसमें उन्होंने अलग अलग पॉसिबिलिटी वाले जीव देखे, जो 31 मिनिमम देखा था ना हमने, तो कोई 35 वाला है, कोई 36 वाला है, 34 वाले से लेके 38 तक उन्होंने, 34, 35, 36, 37, 38 ऐसे पांच अलग अलग जीव देखे और उन पर अलग अलग पद्धति से घटित किया। जैसे 34 की सत्ता वाला जो एकेंद्रिय में गया है तो उसने स्थिति कांड घात चालू किए और उसी समय वो उत्कीर्ण काल, उसके स्थिति कांड घात होने के लिए उत्कीर्ण काल जो चार समय लगता है, यानी स्थिति कांड के भी कितने निशय के एट ए टाइम लिए तो चार और हम माने हुए, और उसके काल कितना लगता है तो चार समय। यथार्थ में स्थिति कांड का आयाम पल्ले का असंख्यात्वा भाग होता है और वो उत्कीर्ण काल एक अंतर्मूर्त होता है, परंतु यह समझाने के लिए चार और चार लिए उन्होंने। तो पहले समय में क्या होगा, स्थिति कांड की एक फाली गिरेगी परंतु स्थिति उतनी ही रहेगी, परंतु उत्कीर्ण काल में से एक समय गया तो नीचे का एक निशय खिर जाएगा, क्योंकि बंध तो अभी बहुत कम हो रहा है और जो सत्ता है उसे एक एक समय गलते हुए एक एक समय गल जाएगा, तो उसके कितना रहेगा अभी स्थिति सत्व 34 लेके आया था, अब उसका 33 हो जाएगा, दो समय के बाद 32 हो जाएगा, तीन समय के बाद 31 हो जाएगा। ये सारे पुनरुक्त स्थान कहेंगे, क्योंकि ये बंध की अपेक्षा हमने पंचेंद्रियों में देखे थे, ये पुनरुक्त हुए। अभी कहते और एक समय अगर बीत जाता है तो वो तो चार हो जाएगी, परंतु सिद्धि कांडक भी हो जाएगा, तो एक साथ पांच कम करने पड़ेंगे, वो नहीं चलेगा। अभी वो 34 वाले को छोड़ दिया और 38 वाले को लिया, और 38 वाले ने 38 की सत्ता के साथ एक इंद्रिय में आया हुआ है, तो उत्कीर्ण काल चार समय गए और उसी समय वो अंतिम समय में स्थिति कांडक भी हुआ, तो एक साथ उसमें से 8 समय हमने माइनस किए, तो 38 माइनस 8 30 हो जाता है, वो अपुनरुक्त स्थान हो गया। एक नंबर। अभी 37 वाला लिया, तो ऐसे अलग अलग हमने देखा था, 37 की सत्ता के साथ आया है, उसके 8 समय बीत जाते हैं, तो 29 वाला होगा, फिर 28, इस तरह से अलग अलग जोन की अपेक्षा उन्होंने बताई। उसके बाद दो स्थिति कांडक की बात ली, फिर तीन स्थिति कांडक की बात, इस तरह से ये सारे अनुत्कृष्ट स्थान बता रहे हैं, यानी कभी 34 वाला लेना, कभी 38 वाला, 37 वाला, 36 वाला लेना, इस तरह से दो अलग अलग, यानी पांचों अलग अलग जीव लिए थे, यहाँ पर पांच लिए थे, वैसे अलग अलग जीवों की अपेक्षा वो सारे अनुत्कृष्ट स्थान उत्पन्न हो सकते हैं। अब यहाँ आते हैं 102 पेज पर। हमने वो 13 तक के स्थान देखे थे, आपको याद होगा, तो कल हमने नंबरिंग डाला था ना उसमें, ये 13 वाला वो अपुनरुक्त स्थान है, पेज नंबर 102 पर कल आप थे ना। हाँ, तो लास्ट लाइन में क्या लिखा, यह अपुनरुक्त स्थान है वो 13 वाला। पुनः तृतीय जीव के द्वारा, अब देखो प्रथम जीव ने वो 38 वाला लेते हम, दूसरा वाला 37 वाला लेते हैं, और तीसरा वाला है तो वो 36 वाला होगा, और उसका तृतीय स्थिति कांडक है, यानी दो स्थिति कांडक ऑलरेडी गए हैं, तो दो स्थिति कांडक गए हैं और दो उत्कीर्ण काल गए, तो 16 समय इसे माइनस कर देना, और एक समय बीत जाता है तो उसको 17 माइनस कर सकते हैं उसमें से। फिर देखो तृतीय जीव के द्वारा, तृतीय जीव यानी वो 36 वाला, तृतीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, यानी हम उसमें से डायरेक्ट 17 माइनस करेंगे, 36 में से 17 गए। तृतीय जीव यानी 36 वाला होगा, क्योंकि पहला वो 38 वाला लिया था उत्कृष्ट स्थिति वाला, फिर द्वितीय जीव लिया है 37 वाला, यानी उसमें भी हमने ऊपर देखो ना, 37 वाले को पहले हमने 17 माइनस किए तो 20 आया था, वो अपुन ये पुनरुक्त मिला था, 19 पुनरुक्त था, फिर 18 भी पुनरुक्त हुआ था, और एक साथ तृतीय स्थिति कांडक और एक उत्कीर्ण काल गया, यानी पूरा उत्कीर्ण, तो 5 माइनस हो गए, तो 13 वाला स्थान मिला था। वैसे यहाँ पर करना कि तृतीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर 36 में से 17 माइनस करो तो 19 वाला वो पुनरुक्त स्थान मिलेगा, यह पुनरुक्त स्थान है। पश्चात द्वितीय फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है, वो 18 वाला हो जाएगा। इसी जीव के द्वारा तृतीय फाली के विघटित कर जाने पर उत्कीर्ण काल का तृतीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है, वो 17 हमने अन्य पद्धति से निकाला था। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानों के बीतने पर, वो बीतने पर हुआ, बीतने पर फिर तृतीय स्थिति कांडक की अंतिम फाली के विघटित होने पर, अभी एक साथ 5 समय माइनस हो जाएंगे, क्योंकि स्थिति कांडक 4 निषेकों का हो जाएगा और उत्कीर्ण काल का अंतिम समय हो जाएगा। उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है। हाँ, अभी उसमें 17 में से डायरेक्ट 5 कम हो गए, 12 वाला अपुनरुक्त स्थान हो जाएगा, इसका कारण सुगम है। अब चौथा जीव है कौन सा, 35 वाला। तत्पश्चात चतुर्थ जीव के द्वारा तृतीय स्थिति कांडक की प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, यानी वो 35 जो वाला जीव है, डायरेक्ट उसमें से 17 माइनस कर दो तो 18 वाला जो होगा, यह पुनरुक्त स्थान है। आप उसके ऊपर अगर नंबरिंग लिखेंगे तो आसान होगा समझने के लिए। समझ में आ रहे हैं कि बहुत फास्ट हो रहा है? ये तो वही के वही हर एक में इतना ही हमको देखना है। द्वितीय फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। ब्रह्मा कौन सा होगा? ये 17। हाँ, तृतीय फाली के विघटित होने पर, पेज नंबर 103 पर आ गए, उत्कीर्ण काल का तृतीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। यह हो जाएगा 16। इस प्रकार तब तक पुनरुक्त स्थान उत्पन्न होते हैं जब तक एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण फालिया विघटित नहीं हो जाती। यहाँ तो हमने चार माने हैं, इसलिए तीन ही फालिया हमने विघटित की, यथार्थ में तो असंख्यात हो जाएगी। पश्चात अंतिम फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि अंतिम फाली भी गई और वहां तो चार स्थिति कांडक के चार निषेक भी गए, यानी अभी हम 16 तक पहुंचे थे, 16 में से 5 माइनस करो तो 11 वाला जो है वह अपुनरुक्त स्थान है, इसका कारण सुगम है। यहां तक समझ में आई बात? इस प्रकार जानकर एक कम उत्कीर्ण काल से अधिक स्थिति कांडक प्रमाण स्थानों को ले जाना चाहिए। एक कम उत्कीर्ण काल से अधिक स्थिति कांडक यानी 7 स्थानों को ले जाना चाहिए। यानी हमने देखा था ना, इस तरह से वो अलग अलग हम स्थान निर्माण करते, क्योंकि पहले 34 के द्वारा हमने 3 स्थान ये पुनरुक्त थे और एक अपुनरुक्त लिया था, फिर 38 से 36, 37 से 36 से 35 से, इस तरह से ये हो गया ले जाना चाहिए। तत्पश्चात अंतिम जीव के द्वारा पूर्व में स्थापित करके आई हुई अंतिम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है। देखो हमने 34 वाले को यानी पहले 34 में से हमने 17 माइनस किए तो 17 रह गए, चौतीस में से डायरेक्ट 17 रहेंगे तो 17 रहेंगे, फिर 17, 16 और 15 तीन स्थान हो गए, और 15 में से डायरेक्ट 5 गए तो 10 वाला स्थान हो जाएगा, यह अंतिम जीव लिया, यह अपुनरुक्त स्थान है। जहां अपुनरुक्त लिखा वहां 10 डालना। इस प्रकार तृतीय परिपाटी की प्ररूपना की है। इस प्रकार ध्रुव स्थिति से उत्पन्न होने वाले पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र स्थिति कांडकों का आश्रय करके, एक एक कांडक भी पल्ले का असंख्यात भाग होगा, और ऐसे कांडक कितने हो गए तो पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण कांडक हो जाएंगे। निरंतर स्थानों की प्ररूपणा करना चाहिए, हमें निरंतर स्थान चाहिए, एक एक समय से घटते हुए। वो अलग अलग पद्धति से उन्होंने यहाँ तो 5 लिए, पर यथार्थ में तो पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण हो गए और उतने ही स्थिति कांडक करना है। अब संपूर्ण उत्कीर्ण काल से यानी 4 और एक स्थिति कांडक से अधिक, 4 और 4 8 अधिक एकेंद्रीय स्थितिबंध के बराबर स्थिति सत्कर्मक युक्त जीव के द्वारा प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का एक समय गलता है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, अब कौन सा जीव? एकेंद्रीय जीव जितना स्थितिबंध कर सकता है। अभी हमने यथार्थ में देखा था एक सागर का 3 सप्तमांश, तो इतने सारे अभी कितना कितने स्थिति के साथ आया है ये जीव, एकेंद्रीय का जो स्थिति बंध है उससे अभी हम कहेंगे 8 समय ज्यादा वाला है, 8 समय प्लस एकेंद्रीय का स्थिति बंध। फिर से पढ़ती हूँ, संपूर्ण उत्कीर्ण काल से यानी 4 से और एक स्थिति कांडक से अधिक, यानी यथार्थ में कांडक होगा पल्ले का असंख्यात भाग और उत्कीर्ण काल होगा अंतर्मूर्त, उससे अधिक एकेंद्रीय स्थितिबंध के बराबर, हाँ 31 नहीं, 31 वो तो पंचेंद्रियों का मिनिमम स्थिति बंद था, ध्रुव स्थिति थी। एक इंद्रिय कितना, वो तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर थी, और ये सागर का 3/7 भाग है। एक इंद्रिय के योग्य जितना बंध है उसमें से एक उत्कीर्ण काल और एक स्थिति कांड कितना अधिक रखकर वो जीव एक इंद्रिय में आया है, ऐसा जीव लेना है। एक इंद्रिय की उन्होंने बताई नहीं है क्योंकि ऊपर तो हम 10 तक आ गए थे ना। उन्होंने क्या क्या कहा था, ऐसे कितने हो जाते हैं पल, एक मिनट, यानी ऐसे 4 स्थिति कांडक ही हो सकते हैं ना। यहाँ अगर यहाँ तो उन्होंने 3 बताए हैं, अभी इससे कितना कम करेंगे, 10 तक तो आ गए हम अभी जो कुछ इतने स्थिति के हम आगे पढ़ेंगे तो इसकी संदृष्टि शायद बना सकेंगे। तो ऐसे जीव के द्वारा प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का एक समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है। अगर यहाँ अपुनरुक्त बताना है तो 9 बताना पड़ेगा। तो ये 9 है अपुनरुक्त होता है, उत्कीर्ण काल और स्थिति कांडक से अधिक। इसका अगर हम 9 करते हैं तो कितने से अधिक लेके आया हुआ, इतना अधिक रख के आए थे ना, मैंने 10 के साथ आया था तो उसका एक समय गला है, तो 10 के साथ आया था तो उसमें 4 और 4 8 अधिक थे, यानी उसका एक इंद्रिय का 2 ही मानना पड़ेगा। शायद अभी आगे चलकर उसकी संदृष्टि बना सकेंगे। यानी अगर एक इंद्रिय का बंध 2 मानते हैं और उसमें अगर 8 समय अधिक लेके वो एक इंद्रिय में आया है तो ही उसका एक समय गलने पर 9 हो जाएगा। जरा मन में रख के आगे पढ़ेंगे, पेज नंबर 103 पर है नीचे का पैराग्राफ। ये हमने कल देखा था ना, वो घटाते 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 35 वाला 34 वाला सारे घटित किए थे, 10 तक हम आए थे। उसके बाद अभी एक इंद्रिय में एक इंद्रियों के बंध से अधिक 4 और 4 8 समय लेकर आया है यहाँ पर, और जब एक समय बीतता है तो उसका 9 हो जाएगा, अपुनरुक्त स्थान होता है। द्वितीय फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी अपुनरुक्त स्थान है, हम 8 मानेंगे इसको। तृतीय फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का तृतीय समय गलता है, यह भी अपुनरुक्त स्थान है, 7 हो जाएंगे। यही क्रम एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण अपुनरुक्त स्थानों के उत्पन्न होने तक चालू रहता है, वो हमें 7 तक आ गए। अब इसे यूं ही स्थापित करके, हमेशा हम उसको ऐसा ही रखते थे और फिर सर्वोत्कृष्ट से अधिक स्थिति वाला जीव लेते थे। इन विवक्षित जीवों में से सर्वोत्कृष्ट स्थिति सत्कर्मी जीव के द्वारा विवक्षित स्थिति कांडक की प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, यह पुनरुक्त स्थान है। जैसे हमने अन्यत्र देखा था 38 वाला लेकर फिर उसके सारे करके और अंतिम जब तृतीय स्थिति कांडक गल गया था तब जाके उसका अपुनरुक्त स्थान आया था, तो यह अपुनरुक्त स्थान है। अगर ये 6 अगर हमको मानना है ना, क्योंकि 7 तक आए थे हम, नहीं नहीं ये पुनरुक्त है, हम उल्टा करके उसको डेवलप करेंगे। इसी जीव के द्वारा द्वितीय फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है। तृतीय फाली के विघटित होने पर तृतीय, हम कहेंगे बाद में करेंगे, वो तृतीय हुए, तृतीय करो 104 पेज पर, यह भी पुनरुक्त स्थान है। यही क्रम एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानों के बीतने तक, बीतना हुआ, चालू रहता है। फिर विवक्षित स्थिति कांडक की अंतिम फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यानी वो 5 समय एक साथ गए और यह अपुनरुक्त स्थान है। अभी यहाँ से हम डेवलप उल्टा, हम कहाँ तक आए थे, 7 तक आए थे ना, यानी ये 6 वाला हो जाएगा। अभी उल्टा चले जाओ, उसके पहले वाला जो पुनरुक्त स्थान था ना, ऊपर से तीसरी लाइन में, वो पांच पांच का होगा, तृतीय फाली के पांच होगा, द्वितीय फाली के विघटित होने पर चार हो जाता है, और प्रथम फाली के पहला पुनरुक्त तीन होगा। और वो तीन कैसा आया, तो 38 में से कितने जाने पर तीन आते हैं, वही तो हमें तो ओरिजिनल 38 ये कौन सा स्थिति कांडक है वो निकालना है। देखो चार अगर स्थिति कांडक होते हैं तो 8 × 32, एक मिनट, एक मिनट, ये पुनरुक्त स्थान आया, ये छह आया, अच्छा उल्टा किया मैंने, छह पांच चार नहीं, छह सात, और छह के पहले वाला पुनरुक्त स्थान था ना,
नहीं ये तो पुनरुक्त है ना,
नहीं नहीं फिर लास्ट वाला देखो, ऊपर से पांचवी लाइन में अपुनरुक्त स्थान छह वाला आया था, वो कैसा आया था, तो पांच माइनस करके आया था, यानी उसके ऊपर का पांच अधिक वाला स्थान लेना, तीसरी लाइन वाला पांच अधिक वाला छह और पांच ग्यारह वाला हो जाएगा। जरा मैं करके देखती फिर आपको बताऊंगी। उसके पहला वाला पुनरुक्त एक समय अधिक बारह वाला होगा, पहले वाला निकाल दो, उसके पहले वाला तेरह वाला होगा, और वो कैसा है, यानी 38 में से 17 माइनस किए थे 13 आया था, हाँ, यानी अभी फिर 103 पेज पर चलो, मैं अभी सभी संदृष्टि बताती हूँ। अब पेज नंबर 103 पर आना, नीचे से तीसरा लाइन, अब इसे यूं ही स्थापित करके, वो हम सात तक आए थे ना अपनुरुक्त में, उसके नेक्स्ट लाइन पश्चात, इन विवक्षित जीवों में से जो हमने पांच जीव अलग अलग लिए थे, 34 वाला, 35 वाला, 36 वाला, 37 वाला और 38 वाला, इनमें से सर्वोत्कृष्ट स्थिति सत्कर्मिक जीव के द्वारा वो 38 वाला जीव लेना, विवक्षित स्थिति कांडक की प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर, विवक्षित स्थिति कांडक यानी तीसरा स्थिति कांडक, तीसरा प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, यानी दो स्थिति कांडक और दो उत्कीर्ण काल के 16 समय हुए, और तीसरे का एक समय यानी 17 माइनस हो गए तो 13 आ गया, यह पुनरुक्त स्थान है, वहां 13 नंबर डालो। अब इस जीव के द्वारा द्वितीय फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का द्वितीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है, इसको 12 नंबर डालो। तृतीय फाली के विघटित होने पर तृतीय समय गलता है, यह भी पुनरुक्त स्थान है, इसको 11 नंबर डालो। यही क्रम एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानों के बीतने तक चालू रहता है। फिर विवक्षित स्थिति कांडक की, हमारे विवक्षित स्थिति कांडक तीसरा है, तीसरा स्थिति कांडक है, अंतिम फाली के विघटित होने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, यह अपुनरुक्त स्थान है, यानी टोटल तीन स्थिति कांडक हुए, तीन उत्कीर्ण काल हुए, यानी डायरेक्ट हमने उसमें से कितने हो गए, अभी तीसरा था ना, 11 में से हमने 5 कम कर दिए, तो 6 यह अपुनरुक्त स्थान है, क्योंकि अंतिम फाली के बीतने पर पूर्व के अपुनरुक्त स्थिति सत्व से समानता को प्राप्त हुआ, यह स्थिति सत्व अधस्थिति के गलने से उसकी अपेक्षा एक समय कम देखा जाता है। ये बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा? छह आते कि चार आते, कैसे आते? देखो पहले वो 38 में से 17 गाए तो सॉरी 13 कैसे आए? 11 आने चाहिए थे, हमारा गणित कुछ चुक गया। और नहीं 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 17 गिराने पर 11 आते हैं। एक सॉरी 7 ने 1 8 अच्छा 21 आ जाएंगे। नहीं फिर ज्यादा अलग से करना पड़ेगा, 8 त्रिक 24 एक 25 माइनस करेंगे तो 1 मिनट। ठीक 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 नहीं नहीं वो नहीं करना है, 13 निकालने के लिए 25 माइनस करना पड़ेगा। 5 × 3 = 8 2 × 1 हाँ। देखो पहले हमने जो चौथा लिखा था ना, तीसरा लिखा था ना स्थिति कांडक, वो चौथा करना, बस इतना ही करना है, बाकी सब सेम है। फिर आना पीछे पीछे के पेज पर, ये चौथा स्थिति कांडक है। यहाँ लिखे ना विवक्षित स्थिति कांडक की प्रथम फाली के, इन्हें चौथा स्थिति कांडक है ये। लास्ट लाइन लास्ट लाइन लास्ट लाइन हाँ, विवक्षित स्थिति कांडक की है ना, यानी चौथे स्थिति कांडक की पहली हाँ हाँ, यानी 24 हुए, 24 एक 25 माइनस किए तो 13 आ गए, बाकी हमारी संख्या तो बराबर है। या और कहाँ तीसरा लिखा था क्या? चौथी लाइन में था ना, विवक्षित स्थिति कांडक की अंतिम फाली की, यानी चौथे स्थिति कांडक की। अब ये 6 नंबर पर आ गए हम, समझ में है क्या? फिर बताओ, चौथा स्थिति कांडक था तो 3 स्थिति कांडक के चात्रिक 12 समय और 3 उत्कीर्ण काल के 12, 12 और 12 24 हो गए। उसके बाद चौथे स्थिति कांडक का पहला समय बीत गया तो 25 माइनस किए तो 13 आ गए, और एक समय गया तो 12 आ गए, और एक समय गया तो 11 आ गए। अब इसमें एक स्थिति कांडक पूरा हो गया तो 4 उसके समय और एक उत्कीर्ण काल का, एक साथ 5 माइनस किए, 11 में से 5 गए तो 6 आ गए। यह अपुनरुक्त स्थान है। अब आगे देखते हैं, तत्पश्चात द्वितीय जीव के द्वारा, यानी वो 37 वाला जीव लेना, प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है। यहां कौन सा स्थान हो जाएगा? अभी इसमें से 25 माइनस करो तो 12 वाला आ जाएगा, तो ये पुनरुक्त स्थान होगा। वो उन्होंने नहीं लिखा, हाँ 37 में से 25 के तो 12 वाला है, वो पुनरुक्त है, तो ये पुनरुक्त हुआ 12 का। हाँ, द्वितीय जीव के द्वारा प्रथम फाली के विघटित जाने पर उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, वहां वहां ऐसा एक डालो ऊपर के 12 का स्थान, ऐसा लिखे पुनरुक्त 12 का स्थान या पुनरुक्त स्थान 12 का। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ती हूँ, द्वितीय फाली के विघटित होने पर उसका द्वितीय समय गलता है। यहाँ पर लिए हाँ लिखना, ये पुनस्थान लिखना, पुनस्थान अब ये 11 का होगा। तृतीय फाली के विघटित होने पर उसका तृतीय समय, त्रिवरोर करो, गलता है, ये 10 वाला होगा, ये भी पुनरुक्त स्थान है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानों के बीतने पर, यानी इसके पुनरुक्त स्थान कैसे हुए, 12 वाला हुआ, 11 वाला हुआ, 10 वाला हुआ, जब अंतिम फाली विघटित की जाती है तब उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है, दस में से एक साथ पांच गए, पांच वाला आ जाएगा, पांच वाला स्थान। इसके कारण का कथन पहले के ही समान करना चाहिए। अब आ रहे हैं ना बराबर ख्याल में। तृतीय जीव के द्वारा, तृतीय जीव ने छत्तीस वाला, प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर इसमें से डायरेक्ट 36 में से 25 माइनस करो, तो पहला फाली विघटित होने पर इसका पहला स्थान 11 वाला होगा। उत्कीर्ण काल का प्रथम समय गलता है, द्वितीय फाली के विघटित कर जाने पर उसका द्वितीय समय गलता है, 10 रह जाता है। तृतीय त्रु बराबर करो, फाली के विघटित हो जाने पर उसका तृतीय समय गलता है इस प्रकार, यानी 11 हुआ, 10 हुआ, 9 हुआ। समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानों के, ये पुनरुक्त स्थान कौन से हुए, 11, 10 और 9 बीतने पर फिर इसी जीव के द्वारा अंतिम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है। यह अपुनरुक्त स्थान है, यानी 9 में से 5 गए, 4 हो गए, यह अपुनरुक्त स्थान 4 वाला हो गया। इसका कारण सुगम है। चतुर्थ जीव के द्वारा, ये 35 वाला, एक नहीं, एक कांडक और एक उत्कीर्ण काल का समय, यानी 4 निशे के एक साथ गलते हैं अंतिम फाली में, और उसका एक समय भी नीचे से गलता है। अब चतुर्थ जीव के द्वारा 38, 37, 36, 35 वाला लिया, प्रथम फाली के विघटित किए जाने पर अब इसमें से भी 25 डायरेक्ट माइनस करो तो 10 आ जाते हैं। प्रथम समय गलता है, यह अ निकाल दो, ब्रह्मा पुनरुक्त स्थान है, 105 पेज पर ऊपर से चौथी लाइन, अपुनरुक्त लिखा है ना, वो पुनरुक्त चाहिए। इसके लिए प्राकृत में देखो ऊपर से चौथी लाइन, पुनरुत्त ठाणम होदी, पुनरुक्त हुआ ना, ये 10 वाला वो पुनरुक्त है, उसमें क्या है, अपुनरुक्त है क्या, हाँ हाँ, अ निकाल दो। द्वितीय फाली के विघटित होने पर उसका द्वितीय समय गलता है, 9 हो जाएगा। तृतीय फाली के विघटित होने पर उसका तृतीय समय गलता है, 8 हो जाएगा। इसी क्रम से एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण पुनरुक्त स्थानों के उत्पन्न हो जाने पर, कौन कौन से हुए उसके, 10, 9 और 8, फिर पीछे इस जीव के अंतिम फाली के विघटित किए जाने पर उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है। अभी एक साथ 5 माइनस करना, उसमें से 8 माइनस 5, 3 आ गए। इसका कारण सुगम है। तो हमने जो माना था ना, एकेंद्र के दो ही समय वो बंद माना, मान लिया था, उतना ही वहां तक आ गए, सारे ही एक एक समय से घटते 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 सारे स्थान हमने देखे थे। इस प्रकार पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीवों के आश्रय से, ये हमने यहाँ 5 जीवों के आश्रय से देखे थे, एक कम उत्कीर्ण काल से अधिक स्थितिकांडक प्रमाण, एक कम उत्कीर्ण काल से अधिक स्थितिकांडक प्रमाण, यानी एक कम उत्कीर्ण काल है 3 और स्थितिकांडक का प्रमाण है 4, अपुनरुक्त स्थानों को उत्पन्न करा के, यानी वो हमने देखा था ना, इतने इतने कांडों को उत्पन्न करा के, जैसे हमने 5 जीव लिए थे और हर बार इतने इतने स्थान उत्पन्न कराए थे। फिर पूर्व में स्थापित अंतिम जीव का आश्रय करके अपुनरुक्त स्थानों की उत्पत्ति का कथन करते हैं, यथा अंतिम जीव के द्वारा, अभी 34 के 35 के बाद वो 34 वाला आया, विवक्षित स्थिति कांडक की, अभी हमारा विवक्षित स्थिति कांडक चौथा है, अंतिम फाली के विघटित किए जाने पर, क्योंकि एकदम डायरेक्ट अंतिम फाली विघटित करना है, वो 34 में से पहले 25 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर दूसरा स्थान होगा 8 का, तीसरा होगा 7 का, और 7 में से 5 चले जाएंगे। उत्कीर्ण काल का अंतिम समय गलता है, जो शेष है वह एकेंद्रिय के उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म रूप होता है। यानी 34 में से पहले हमने 25 माइनस किए तो आ गए 9, फिर पुनरुक्त स्थान आ गए 9, 8, 7, अंतिम स्थान 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, जो 2 जो है एकेंद्रिय के उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म रूप होता है। ये 2, यह अपुनरुक्त स्थान है क्योंकि उसकी उत्पत्ति पूर्व में नहीं हुई है, ये स्थिति सत्कर्म लिया है। यहाँ एकेंद्रिय में इतना, यानी वो घटाते 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 उसने एकेंद्रिय के योग्य इतना स्थिति सत्कर्म बनाया। यहाँ संदृष्टि में मूल में देखिए, एकेंद्रिय के स्थिति के लिए 2 बिंदु है। देखो हमने ये तो डिराइव करके निकाले है ना, हाँ, जो काल की अपेक्षा सागरोपम के 3/7 भाग के सूचक है, हमने वो पहले देखा था कैसे होता है। जहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर है पंचेंद्रियों में, वहाँ एकेंद्रियों में वो मिथ्यात्व का एक सागर होता है। तो ज्ञानावरणी का वहाँ 30 कोड़ा कोड़ी है, तो यहाँ कितना होगा, सागर का 3/7। इस स्थिति सत्व से, ये सत्व की बात है, इस स्थिति सत्व से एकेंद्रिय के स्थितिबंध का आश्रय करके अनुत्कृष्ट स्थिति विकल्पों को उत्पन्न कराना चाहिए। यानी अभी एकेंद्रिय के योग्य स्थिति सत्व हुआ, अभी इसके आगे कांडक नहीं होगा। अब क्या होगा, इसके आगे के विकल्प कैसे हो गए, एकेंद्रिय इसमें से एक कम स्थिति बांधी, दो कम, इस तरह से उसके स्थितिबंध के आश्रय से वहां उसके स्थान उत्पन्न हो सकते हैं। तो एकेंद्रियों में स्थिति के कितने विकल्प हो सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम में अंतर कितना है, पल्ल का असंख्यात्व भाग, बाकी विकल इंद्रियों में पल्ल का संख्यात्व भाग होता है, तो यहाँ रेंज है पल्ल का असंख्यात्व भाग। अनुत्कृष्ट स्थिति विकल्पों को उत्पन्न कराना चाहिए, यथा बादर एकेंद्रीय जीव के द्वारा, हमने देखा था उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाला बादर एकेंद्रीय पर्याप्त होता है, और मिनिमम बांधने वाला भी वही जीव होता है। तो बादर एकेंद्रीय जीव के द्वारा एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति के बांधने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। अभी उसमें पूर्णांकों में कहना पड़ेगा। 2 समय कम उत्कृष्ट स्थिति के बांधने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। हाँ, 3 समय कम उत्कृष्ट स्थिति के बांधने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार 4, 5 आदि समयों की हीनता के क्रम से सर्व विशुद्ध बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के द्वारा बांधी गई, ऊपर पर्याप्त नहीं लगाया उन्होंने, ऊपर केवल बादर एकेंद्रिय लिख दिया था,
वो भी पर्याप्त ही है ना,
पर्याप्त की उत्कृष्ट होती है। हाँ, एक मिनट, ऊपर क्या लिखा है, इदम में ठीति संता दो तुम जहाँ बादर एकेंद्रिय पज्जत एन, वहाँ पर्याप्त लिखा है, नीचे उसका ट्रांसलेशन में नहीं डाला है। देखो थर्ड लाइन में, देखो बादर एकेंद्रिय पज्जत एन, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के द्वारा, पर्याप्त शब्द डालना पड़ेगा, वही मैं सोच रही थी पर्याप्त क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उत्कृष्ट और जघन्य दोनों बादर पर्याप्तों के होगा। यथा मादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के द्वारा, ये हमने देखा था, इस प्रकार लास्ट में आते, इस प्रकार 4, 5 आदि समयों की हीनता के क्रम से सर्व विशुद्ध बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव के द्वारा बांधी गई जघन्य स्थिति के सत्व समान स्थिति के होने तक उतारना चाहिए। यानी बंद की अपेक्षा उसका स्थिति सत्व उतना कम होता चला जाएगा, कम बांधता गया। यहां तक बात समझ में आई? पहले अपने पंचेंद्रिय के स्थान देखे, फिर किसी भी त्रस में से एकेंद्रिय में उत्पन्न होने वाले के जो अनुत्कृष्ट एक 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 समय के कम होते हुए अलग जीव देखे, और अब यहां एकेंद्रियों में भी बंध की अपेक्षा से अलग अलग जीव लिए। अब एकेंद्रियों में प्राप्त सब स्थान पल्ल्योपम के असंख्यात भाग मात्र ही है, क्योंकि हमने देखा था ना एकेंद्रियों की रेंज ही उतनी होती है उत्कृष्ट से जघन्य में, पल्ल्य के असंख्यात पे भाग प्रमाण एक एक समय के डिफरेंस से इतने स्थान होते हैं, क्योंकि उनमें विचार स्थान विचारण्य पलटने रूप स्थान पलटना पल्ल्योपम के असंख्यात पे भाग मात्र ही होते हैं, ऐसा गुरु का उपदेश है। इस स्थिति के नीचे क्षपक श्रेणी का आश्रय करके, हमने पहले बताया था जो हमने पंचेंद्रियों में जो ध्रुव स्थिति देखी थी वो मिथ्या दृष्टि के तो सर्व विशुद्ध परिणाम में इतनी बनती है उसको लिया था। अब जो एकेंद्रिय के भी जो मिनिमम बंध है ना, और उसका सत्व भी मिनिमम किया वहां पर, उससे भी जो कम स्थान है वो एक श्रेणी में ही हो गए, श्रेणी में हो गए। तो कहता है क्षपक श्रेणी के, क्योंकि उपशम श्रेणी में भले बंध कम होता है परंतु उससे डबल होता है, क्षपक श्रेणी से डबल बंध होता है। सत्व तो अंत कोड़ा कोड़ी रहता है, क्षपक श्रेणी में ही सत्व कम होता है, क्योंकि उपशम श्रेणी में सत्व में कोई ज्यादा, क्योंकि वहां स्थिति कांडक बंध होते हैं, कम होते हैं वो सब। क्षपक श्रेणी में कांडक घात होते रहते लास्ट अंत तक। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, इस स्थिति के नीचे क्षपक श्रेणी का आश्रय करके अन्य अंतर्मूर्त मात्र स्थान प्राप्त होते हैं। देखो कहाँ से, अभी वो तो सागर का तीन सप्तमोश माइनस पल्ले का असंख्यात भाग इतने स्थान थे, जब क्षपक श्रेणी में जब आगे चलकर हम देखेंगे सत्व के स्थान, पहले वहां बंध के स्थान देखते हैं, यानी वहां बंध भी इतना कम, अभी वहां महुनी पर पहले घटाते हैं, बाद में वह अन्य कर्मों में भी घटाते हैं, परंतु वहां तो पल्ले का असंख्यात यानी पहले में अंत कोड़ा कोड़ी सागर शुरुआत में था, फिर घटते 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 उसके स्थिति बंधापसरण भी होते हैं, फिर स्थिति सत्वापसरण भी होते हैं, यानी स्थिति सत्व भी इतने घटता चला जाता है, पल्ले तक आता है, फिर पल्ले का संख्यात्व भाग, पल्ले का असंख्यात्व भाग, फिर वो दूरापकृष्टि ऐसे करते 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 संख्या हजार वर्ष वगैरह इस तरह से, यानी बहुत बड़े बड़े। हाँ, परंतु वहां क्या हो जाएगा, जो अनिवृत्तिकरण परिणाम है, पहले तो अन्य अन्य जीवों की अलग अलग स्थिति होती है तो उसमें वेरिएशन हो सकता है, परंतु जब आगे आगे चलते हैं तब एक सरिखा स्थिति कांडक होगा, यानी एट ए टाइम जो स्थिति है वो ज्यादा कट डाउन होगी। मान लेते अंतर्मूर्त तक उसका एक एक समय गला, जैसे अभी हमने यहां क्या किया, एक एक समय गला है, फिर पांच समय गला है, वैसे वहां पर भी होगा। कांडकों का प्रमाण अलग अलग है, जितनी स्थिति घटेगी उतना कांडक भी छोटा छोटा होता चला जाएगा, यानी अंतिम फाली गिरती है तो एक साथ जितने निषेक गल गए उतने कम हो जाएंगे, यानी वो निरंतर स्थान वहां नहीं पाए जाएंगे, ये मुझे कहना है। अभी हम क्या देख रहे थे, देखो यहाँ 106 पेज पर हमने वो सारे स्थिति कांडक करते 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 जो त्रसों में से आए हुए जीवों को एकेंद्रियों में उत्पन्न करा के एकेंद्रियों का उत्कृष्ट बंध हमने दो समय माना है, उतना उसका स्थिति सत्व होने तक हमने घटाया। उसके आगे के जितने स्थान हो गए, जैसे नहीं नहीं एकेंद्रियों की बात करें, एकेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति सत्व तक आ गए, उसके के आगे ये जो स्थान हो गए पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, वो एक एक समय कम बंध करने वाली जीवों की अपेक्षा लिए। अभी दो से नीचे क्या हम बताएंगे समझ लेना, यानी एक इंद्रियों में जो उसने मिनिमम बंध किया था वहां तक हम नीचे आ गए एक एक समय के डिफरेंस से, उसके नीचे वाले स्थान क्षपक श्रेणी में हो गए, क्योंकि क्षपक श्रेणी में भी स्थिति कांड घात होते 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 वो एक इंद्रिय जितना स्थिति सत्व हुआ, फिर एक इंद्रिय से भी कम ऐसा स्थिति सत्व हो जाएगा, क्योंकि एक इंद्रियों में भी कितना होता है, अभी तीन सप्तमर सागर माइनस पल्ले का संख्या तो इन्हें सागरों में ही कहेंगे ना हम उसको। अब उसके बाद घटते यानी वो अनेक पल्ले है, संख्यात पल्ले हो गए, फिर पल्ले तक आ जाएगा, पल्ले के संख्यात्वा भाग हो जाएगा, पल्ले का असंख्यात्वा भाग हो जाएगा, ऐसे घटते 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 चले जाएंगे। इसलिए वहां जब जब स्थिति कांड नवे गुण स्थान में जब कांड घात होते हैं तो अनुत्कृष्ट स्थान एक एक समय के डिफरेंस से नहीं होगी, ये मैं बता रही हूँ, अभी आगे वो बताएंगे कुछ। इसलिए वहां अंतर्मूर्त प्रमाण ही स्थान होते हैं, ये कहना चाहते हैं। हाँ, इन्हें असंख्यात स्थान होगी वहां पर भी, क्योंकि वहां पर भी कितने बार वो कांडक होगी ना, वह कहते हैं संख्यात हजार बार, संख्यात हजार बार, संख्यात हजार बार, स्थिति कांडक होते ही रहते, होते ही रहते, तो उसके स्थान भी उतने होते चले जाएंगे। हाँ, परंतु पहला कांडक ही नादिक होता है, पहला अनिवृत्तिकरण का पहला कांडक ही नादिक होगा, जितनी स्थिति लेके आया। हाँ, बाद में सत्व और रंध सब समान हो जाएगा ना। पहले तक तो पहले समय में समान नहीं था, बाद में वो समान होता चला जाता है। और उसमें भी सत्व में कांडक का प्रमाण स्थिति सत्व, तो लहान बड़ा और छोटा कांडक तो सत्ता के अनुसार ही किया ना उसने। नहीं नहीं, हम कहते ना हम क्षपित कर्मांशिक के अंत में घटित करते हैं, तो हाँ, पर गुणित कर्मांशिक में स्थिति नहीं लेते, हम परमाणु लेते हैं, स्थिति समान होनी चाहिए, क्योंकि कांडघात करने के बाद इक्वल हो जाता है उसका। हाँ देखो, ये मैं आपके लिए फिर बताती हूँ, यानी वो एक इंद्रिय में घटाया, फिर उससे नीचे के स्थान क्षपक श्रेणी में हो गए। अब नीचे का पैराग्राफ फिर पढ़ती हूँ मैं। अब एक इंद्रिय में प्राप्त सब स्थान पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र ही है, क्योंकि उनमें विचार स्थान ने पलटने के स्थिति बंध के अलग अलग पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र ही होते हैं, ऐसा गुरु का उपदेश है। अब उसके आगे, इस स्थिति के नीचे यानी इससे कम स्थिति स्थिति सत्व जो है क्षपक श्रेणी का आश्रय करके अन्य अंतर्मूर्त मात्र स्थान प्राप्त होते हैं। अंतर्मूर्त मात्र कहा, यथा एक जीव क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर अनिवृत्तिकरण क्षपक हुआ। अनिवृत्तिकरण इसलिए कि इसके आगे सारे परिणाम समान हो गए। पश्चात अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभागों के बीतने पर वह असंगी जीव के स्थितिबंध के समान स्थिति सत्व को करता है। देखो इस वाक्य में जरा गौर करना, स्थितिबंध करता है ऐसा कहा, का स्थिति सत्व करता है ऐसा कहा, किसके समान करता है? असंगी के बंध के समान इसका स्थिति सत्व होता है। असंगी का बंध कितना है? हजार सागर का तीन सप्तमश, तीन सप्तमश, क्योंकि ज्ञानावरण की बात है ना, हजार सागर का तीन सप्तमश, तो इसने ज्ञानावरण का सत्व इतना बना दिया, कितना? हजार सागर का तीन सप्तमांश, तो उसके बंध के समान इसका स्थिति सत्व हो जाता है। तत्पश्चात अंतर्मूर्त काल बिताकर, देखो इसका बंध तो इससे भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पहले स्थिति बंध का अपसरण होता चला जाता है, फिर स्थिति सत्व का अपसरण होता है। पहले बंध घटाते चले गया और फिर सत्व को घटाते चला जाएगा। तत्पश्चात अंतर्मूर्त काल बिताकर चतुरिंद्रिय के स्थितिबंध के समान स्थिति सत्व को करता है, क्योंकि अंतर्मूर्त काल बिताकर क्यों? इसमें तो संख्यात हजार बार स्थिति सत्व का अपसरण हुआ। अपसरण कैसे होगा? स्थिति सत्व कैसे घटेगा? कांडक घातों के द्वारा। स्थिति कांडक घात से स्थिति सत्व घटता है, यानी एक एक छोटे छोटे अंतर्मूर्त में उसके बहुत सारे निषेक उसके नष्ट हो जाएंगे, तो चतुरिंद्रिय के समान करता है, यानी सौ सागर का तीन सप्तमांश। ये स्थिति सत्व की बात है। पश्चात अंतर्मूर्त काल बिताकर, यानी उस एक अंतर्मूर्त में कितने ही हजारों करोड़ों अंतर्मूर्त हो जाएंगे, तब जाके वो तीन्द्रिय जीव के स्थिति बंध के समान स्थिति सत्व को करता है। ये उसका बंध है और इसका सत्व, इसकी कंपेरिजन चल रही है, यानी उसकी सत्ता में अभी पचास सागर का तीन सप्तमांश हो गया। पश्चात अंतर्मूर्त काल जाकर वह द्विन्द्रिय जीव के स्थिति बंध के समान स्थिति सत्व को करता है, यानी 25 सागर का तीन सप्तमांश। तत्पश्चात अंतर्मूर्त के बीतने पर एकेंद्रिय जीव के स्थिति बंध के समान यानी सागर का तीन सप्तमांश स्थिति सत्व को करता है। इस प्रकार शपक श्रेणी में कहकर आए हुए ये सभी स्थिति सत्व स्थान पुनरुक्त ही है। क्या कहा? क्यों उसके बंध के समान ये करता है? ये सारे स्थान कैसे है? यहां तक तो पुनरुक्त है, क्योंकि एकेंद्रिय जीव के जगन्य बंध की अपेक्षा ये स्थितियां बहुत पाई जाती है। क्या कहा? एकेंद्रिय के स्थिति बंध के समान किया ना, तो उसके पहले वाले जो सारे थे वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्थान थे, अभी तो जाके एकेंद्रिय के बंध के समान स्थान तक पहुंच गए हैं। अब पुनः एकेंद्रिय के स्थिति सत्कर्म में से स्थिति सत्कर्म लिया, पल्योपम के संख्यात्वे भाग मात्र, असंख्यात्वे लिखा ना, ऊपर संख्यात यदि लिखा है और नीचे असंख्यात यदि लिखा है। एकेंद्रियों का स्थिति सत्कर्म में कितना है? संख्यात पल्ले हुआ है ना, देखो एकेंद्रियों का स्थिति सत्कर्म कितना हुआ हमने देखा था, सागर का तीन सप्तमांश माइनस पल्ले का असंख्यात भाग, यानी उसको हम संख्यात पल्ले कह सकते हैं कि नहीं सकते? एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं, हाँ उसमें ओ निकालो, हाँ संख्यात विभाग मात्र। एक स्थिति कांडक को देखो देखो असंख्यात विभाग, इसलिए नहीं होता है कि जब पल्ले प्रमाण स्थिति होती है, ये नियम है, वो चार जो सत्व के या बंध के जो स्थान बताए जाते हैं, जब पल्ले प्रमाण आता है और पल्ले से लेकर पल्ले के संख्यात विभाग जब तक स्थिति नहीं होती है, तब तक एक एक स्थिति कांडक पल्ले का संख्यात भाग होता है और उसके आगे वो संख्यात बहुभाग वगैरह होता है। संख्यात बहुभाग करते करते पल्ले के असंख्यात विभाग तक पहुंच जाएगा, तब जाके असंख्यात बहुभाग स्थिति कांडक होता है, एक स्थिति कांडक। ये अभी क्षपक श्रेणी में ये रिसेंटली हुआ है मेरा, हाँ। तो पल्ले के संख्यात विभाग मात्र एक स्थिति कांडक लेना, एक एक स्थिति कांडक पल्ले का संख्यात भाग होता है, यानी संख्यात विभाग मात्र स्थिति कांडकों को नहीं, एक स्थिति कांडक उतना उतना होता है, यानी एट ए टाइम इतनी स्थिति एक साथ घटेगी। अभी तक हमने संख्यात भाग, मैं क्या कहना चाहती हूँ, अभी तक हमने क्या देखा था, स्थिति सत्व में या बंध में एक एक समय कम करते आए हैं, अब एक एक समय का डिफरेंस नहीं पड़ेगा। हाँ, एकेंद्रिय के स्थिति सत्व के नीचे अभी आने, यानी उसने स्थिति सत्व कितना हुआ उसका, वो एकेंद्रिय के समान हुआ, बंध के समान। अभी वहां उतने के बाद उसने जो एक स्थिति कांडक किया, तो एक समय नहीं घटेगा, एक स्थिति कांडक हुआ, उसकी अंतिम फाली जब गिरती है, अंतिम फाली तक तो एक एक समय कम होगा, उसके बाद एट ए टाइम पल्ले के संख्यात विभाग प्रमाण निषेक कट डाउन हो गए, तो उतने स्थिति सत्व किसी जीव को नहीं होगा, ये कहना चाहते। जब तक उसके अंतिम फाली नहीं गिरती तो स्थिति सत्व एक एक समय से गया, जब अंतिम फाली गिरती है तो जैसे हमने एट ए टाइम पांच समय माइनस किए थे, वैसे यहां पर करना है। देखो फिर से पढ़ती हूँ, पुनः एकेंद्रिय के स्थिति सत्कर्म में से, यानी उतना जब स्थिति सत्कर्म हुआ उसमें से पल्योपम के संख्यात्वे भाग मात्र, या एक शब्द डालो, एक स्थिति कांडक को ग्रहण करता है, वह जब तक विघटित होता है, तब तक विघटित होता है ना, उसका उत्कीर्ण काल चलता है, एक फाली दो फाली तीन फाली, जब तक विघटित होते हैं ना, एक एक फाली गिरती है, एक एक फाली नीचे आ जाएगी, यानी उत्कीर्ण काल तक, तब तक अधस्थिति के गलने से, यानी नीचे का एक एक निषेक जा रहा है। जैसे हमने देखा ना उत्कीर्ण काल में क्या हो रहा है, एक एक निषेक गल रहा है और जब तक अंतिम फाली नहीं गिरती तब तक ऊपर स्थिति में से कोई परिवर्तन नहीं होता, अंतर्मूर्त मात्र स्थान प्राप्त होते हैं। ये समझ में आई बात? देखो क्षपक श्रेणी में जब पल्ले के आगे जो स्थिति घटती चली जाती है, अब उसने एक कांड घात इतना ग्रहण किया, अभी हमने इसमें पांच मान लिए समय, तो उसमें से एक फाली खिर गई, इस नीचे से एक समय गल गया, दूसरी फाली, तीसरी फाली, जब पांच फालियों के नीचे पांच अंतर्मूर्त, यानी पांच बार इसमें से एक एक निशे गल गया, अंतर्मूर्त प्रमाण एक एक समय के भेद से विकल्प मिले, उसके बाद क्या होगा, ये पल्ले के संख्या पे भाग मात्र निषेक एक समय में अंतिम फाली रूप से नष्ट हो जाएंगे, तो उसकी एकदम ड्रॉप डाउन हो जाएगा सत्व। ये कह रहे देखो, जब तक वह विघटित होता है तब तक अधस्थिति गलने से अंतर्मूर्त मात्र स्थान प्राप्त होते। अंतर्मूर्त क्या है, वो उत्कीर्ण काल है, या एक समय कम उत्कीर्ण काल कहो, वे पुनरुक्त हैं, क्योंकि वे एकेंद्रियों में प्राप्त स्थानों के अंतर्गत है, क्योंकि हमने एकेंद्रिय के उत्कृष्ट से फिर उसके बाद हमने देखी थी, उसमें भी ये पाए जाते। पश्चात ग्रहण किए गए स्थिति कांडक की अंतिम फाली के विघटित होने पर एकेंद्रिय संबंधी विचार स्थानों की अपेक्षा असंख्यात गुणा हटकर दूसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। ख्याल में है? असंख्यात गुणा हटकर, इन्हें उसे इतने स्थान छोड़कर यह अपुनरुक्त स्थान होगा, यानी जितने निषेक गलेंगे एक साथ उतने उसके उसके गैप पड़ेगी बीच में। यहाँ क्या किया, देखो एक केंद्रीय संबंधी विचार स्थान कितने हैं, पल्ले के असंख्यात विभाग, उससे असंख्यात गुणा हटकर दूसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। ये ऊपर हमने जो देखा था पल्ले का संख्यात वा भाग, वो इससे असंख्यात गुना हो सकता है, असंख्यात गुना असंख्यात वा भाग भी हो सकता है, संख्यात वा भाग भी हो सकता है। तत्पश्चात द्वितीय समय में दूसरे स्थिति कांडक को ग्रहण करता है, उस स्थिति कांडक के उत्कीर्ण काल में से एक समय के गलने पर दूसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। देखो ये समझ में आती है बात, अभी सबकी स्थिति समान लेना है, अलग अलग जीव यहाँ नहीं लेना है, इसी से सिद्ध होता है अलग अलग जीवों की अलग अलग स्थिति होती यहाँ पर, तो अलग अलग जीवों की अपेक्षा अलग अलग अपुनरुक्त स्थान ले लेते, वैसा नहीं किया, एक पहला स्थिति कांडक गात होने पर अभी सबकी स्थिति समान हो जाएगी। अब दूसरा स्थिति कांडक ग्रहण किया तो जब तक अंतिम फाली नहीं गिरती तो एक एक ही समय गलेगा, तो अंतर्मूर्त प्रमाण उतने स्थान फिर शुरू हो जाएगी, उसके बाद जब अंतिम फाली गिरेगी तो फिर बड़ा गैप हो जाएगा, यानी ये सांतर स्थान हो गए, अंतर्मूर्त तक तो एक एक समय से और फिर बड़ा गैप, फिर अंतर्मूर्त प्रमाण एक एक समय से गलती, सांतर है। हाँ देखो, द्वितीय समय के गलने पर द्वितीय अपुनरुक्त स्थान होता है, तृतीय समय के गलने पर तृतीय अपुनरुक्त निरंतर स्थान होता है। ये निरंतर हुए, जब तक उत्कीर्ण काल चल रहा है तो निरंतर स्थान है, जब अंतिम फाली खिरती है तो एकदम बड़ा गैप आ जाता है। इस प्रकार उत्कीर्ण को निकालो। ये समझ में आ रही बात ब्रह्मा? जब तक उत्कीर्ण काल चल रहा है तो क्या एक एक समय गल रहा है, जब स्थिति कांडक की अंतिम फाली गिरती है तो वो कांडक प्लस एक एक समय यहाँ का, इतना गैप हो जाएगा एक साथ। तो इस प्रकार उत्कीर्ण काल के द्विचरम समय तक निरंतर स्थान पाए जाते हैं, फिर अंतिम फाली विघटित होती है, उसके विघटित होने जाने पर पल्ले के संख्यात्व भाग मात्र अंतर करके, यहाँ संख्यात्व भाग आया ना लिखकर, यानी ऊपर संख्यात ही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ का एक एक कांडक का प्रमाण पल्य का संख्यात भाग है। तो पल्योपम के संख्यात वे भाग मात्र अंतर करके अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। तत्पश्चात अन्य स्थिति कांडक को ग्रहण करता है। अभी यहाँ पर भी फिर एक एक समय के वाले निरंतर स्थान हो गया अंतर्मूर्त प्रमाण। उस स्थिति कांडक के उत्कीर्ण काल में से एक समय के गलने पर अन्य अपुनरुक्त निरंतर स्थान होता है। द्वितीय समय के गलने पर अन्य अपुनरुक्त निरंतर स्थान होता है। इस प्रकार एक समय कम उत्कीर्ण काल प्रमाण अपुनरुक्त निरंतर स्थान पाए जाते हैं। देखो आगे आगे के उत्कीर्ण काल भी छोटे होते चले जाते हैं। जैसे कांडक छोटे होते चले जाएंगे वैसे उत्कीर्ण काल भी थोड़े थोड़े छोटे होंगे। पश्चात उत्कीर्ण काल के अंतिम समय के गलने पर अंतिम फाली प्रमाण स्थानों का अंतर करके, समझ में आई बात, अंतिम फाली जितने निषेकों की होगी वो एक साथ कट डाउन हो गए तो उतना अंतर हो जाएगा, अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार निरंतर और सांतर क्रम से, ये समझ में आ रही बात, सांतर निरंतर क्यों, जब जब अंतिम फाली खिरती है, हाँ, उत्कीर्ण काल का अंतिम समय और उसी समय स्थिति कांडक की अंतिम फाली गिरती है, एक साथ इतने अंतर पड़ते हैं। इस प्रकार निरंतर और सांतर क्रम से स्थान तब तक पाए जाते हैं जब तक, वो त करो बरोबर, जब सक हुआ, जब तक क्षीण कषाय गुण स्थान के काल का संख्यात बहुभाग बीतता है, यानी भी संख्यात वा भाग शेष रहा। पश्चात क्षीण कषाय जीव के अंतिम स्थिति कांडक की, अंतिम स्थिति कांडक लिया, अंतिम फाली के विघटित होने पर क्षीण कषाय के अंतिम समय तक क्षीण कषाय काल के संख्यात वे भाग मात्र उदय क्षय से निरंतर अपुनरुक्त स्थान पाए जाते। क्या कहा, क्षीण कषाय के काल में भी बहुत सारे संख्यात हजार कांडक घात होंगे और उसमें भी जो अंतिम कांडक है वो खिरने पर क्या होगा, जितने निषेक रहे अभी कांडक घात नहीं होगा, अंतिम कांडक खिर गया तो अभी क्या होगा, एक एक निषेक गिलेगा गरेगा, एक एक हमें स्थिति देखनी, हमें गुण श्रेणी हुई कि क्या हुआ उसका अभी अपना विषय नहीं है, हमें तो निषेक कितने हैं बस इतना ही देखना है। अभी एक 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 निषेक करके जाएगा, वहां वो उदीर्णा होती है कि क्या होता है वो अपना यहाँ का विषय नहीं है, हमारा तो स्थिति कितने निषेक कितने बाकी रहे बस इतना विषय है। यहाँ क्षपक श्रेणी में प्राप्त निरंतर स्थान अंतर्मूर्त प्रमाण होते हैं, क्योंकि यानी सारे क्षपक श्रेणी के सारे स्थान निरंतर स्थान, यानी पहले स्थानांतर बीच में अंतर गया फिर अंतर्मूर्त फिर अंतर गया फिर अंतर्मूर्त, सारे अंतर्मूर्त को मिलाकर भी अंतर्मूर्त हो जाएगा, यानी टोटल स्थान उसके कितने हो गए तो अंतर्मूर्त, क्योंकि एक कम उत्कीर्ण काल को संख्यात हजार रूपों से गुणित करने पर। क्या कहना चाहते हैं, हमने हर बार जो निरंतर स्थान कितने थे, एक समय कम उत्कीर्ण काल, एक समय कम उत्कीर्ण काल, एक समय कम उत्कीर्ण काल, ऐसे कितने बार हो गए, तो जितने स्थिति कांडक हो गए उतने, तो स्थिति कांडक घात कितने होते हैं, संख्यात हजार यानी अनेक कोड़ा कोड़ी बार होते हैं, ये तो हमने देखा था पहले। हाँ, संख्यात हजार लिखे, हाँ आप उसमें संख्यात लिखे क्या, नहीं संख्यात हजार रूपों से, हाँ ठीक है, संख्यात हजार रूपों से गुणित करने पर क्षपक श्रेणी में उत्पन्न समस्त निरंतर स्थान उत्पन्न होते। समस्त निरंतर ने एक बार निरंतर हुए फिर गैप पड़ा फिर निरंतर हुए फिर गैप हुआ, सारे निरंतर 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 एक साथ अगर हम जोड़कर कहेंगे वो सारे मिलकर भी अंतर्मूर्त हो गए, क्योंकि एक बार अंतर्मूर्त है और ऐसे संख्यात हजार अंतर्मूर्त मिलकर भी अंतर्मूर्त ही होते हैं। परंतु सांतर स्थान संख्यात ही है, यानी सांतर भी उतने ही हो गए, क्योंकि सारे इतने अंतर्मूर्त थे, संख्यात हजार अंतर्मूर्त मिलकर भी एक अंतर्मूर्त हुआ, और उतने ही यहाँ अंतर भी, यानी वो भी संख्यात हजार हुए, लिखा संख्यात, स्थान संख्यात ही है, हजार लिखा है, क्योंकि संख्यात यानी संख्यात हजार, ऐसे हमने साइड में लिखा रखे, क्योंकि जितने अंतर्मूर्त हो गए उतने ही संत, वो तो साइड में लिख के रखो, संख्यात ही है, वो निरंतर कितने हैं तो कहते अंतर्मूर्त है, और सांतर कितने हैं, संख्यात है, पर संख्यात का प्रमाण संख्यात हजार होगा, क्योंकि जितने स्थिति कांडक हो गए उतने ही सांतर स्थान हो गए। नहीं नहीं, हमारे समझने के लिए संख्यात हजार लिखना है हमको, क्योंकि क्षपक श्रेणी में संख्यात ही स्थिति कांडकों का विघटन पाया जाता है, क्योंकि संख्यात ही नहीं, संख्यात कहने से वो संख्यात हजार ही हो जाते हैं। कहते संख्यात पल्योपम प्रमाण स्थान यहाँ नहीं पाए जाते, संख्यात पल्योपम, क्योंकि हमने संख्यात पल्य से स्थिति सत्व देखा था, संख्यात पल्य क्यों लिया, एक इंद्रियों का स्थिति सत्व कितना है तो संख्यात पल्य है, संख्यात पल्य कैसा निकाला, देखो संख्यात पल्य ये क्यों लिखा यहाँ उन्होंने, क्योंकि एक इंद्रियों का सत्व कितना था हमने देखा, तीन सप्तमांश सागर माइनस पल्ले का संख्या का भाग जो कुछ है, तीन सप्तमांश सागर यानी उसमें पल्ले कितने हो गए, यानी तीन सप्तमांश सागर के पल्ले कितने हो गए, सागर के बदले दस कोड़ा कोड़ी लिखो, यानी तीन सप्तमांश मल्टीप्लाइड बाय दस कोड़ा कोड़ी पल्ले, यानी दस कोड़ा कोड़ी पल्ले का तीन सप्तमांश का अर्थ क्या है, संख्यात पल्य, इसको कहते संख्यात पल्य। ख्याल में आई कि ये संख्यात पल्य में जितने समय है उतने स्थान नहीं होंगे, ये इनको कहना है। यहां न प्राप्त होने वाले इन स्थानों को, यानी जो बीच बीच में गैप वाले स्थान है ना अंतर वाले, उनकी टोटल करेंगे, इन स्थानों को कर्म स्थिति में से कम कर देने पर, देखो ये सांतर जो है, अंतर कितने हैं तो संख्यात अंतर हुए, परंतु एक अंतर में कितना गया था तो पल्ले का संख्यात वा भाग वाला पहला कांडक था, प्रथम कांडक संख्यात वा भाग था, आगे बहुत आगे चले जाने पर वो जो स्थिति सत्व एकदम अंतिम समय तक जो कम हो जाता है क्षीण कषाय के, वहां तो आगे के वो जो बहुत छोटे 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 कांडक हो गए, इन सबको मिलाकर यानी उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, देखो इन स्थानों को यानी इन सबकी टोटल करके कर्म स्थिति में से कम कर देने पर जो शेष रहता है उतना अनुत्कृष्ट स्थान के विकल्पों का प्रमाण होता है। ये समझ में आती है बात, पहले हमने 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाला उत्कृष्ट देखा था, एक समय कम से लेकर अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण गृह स्थिति तक तो पंचेंद्रियों में देखे थे, बाद में एक इंद्रियों में जाकर स्थिति कांडक की अपेक्षा से अलग अलग जीवों की अपेक्षा हमने वहां के स्थान देखे थे, एक इंद्रियों के मिनिमम सत्व तक आए, फिर वो क्षपक श्रेणी के स्थान देखे हमने, तो क्षपक श्रेणी में हमने देखे थे कि एक उत्कीर्ण काल होता है, एक स्थिति कांडक होता है, तो पहला स्थिति कांडक तो पल्ले का संख्यात वा भाग प्रमाण था, तो उतना बड़ा अंतर पड़ा, आगे के कांडक छोटे छोटे होते हैं तो उतने उतने सारे संख्यात कांडकों को इकट्ठा करके जो संख्या आ जाएगी उतना पूरे कर्म स्थिति में से माइनस करेंगे तो उतने हमें अनुत्कृष्ट स्थान मिलेंगे, इतने विकल्प मिल जाएंगे, ये यहाँ का कहना है। ख्याल में आई इतनी बात, जो जीव इन स्थानों के स्वामी है उनकी छह अनुयोग द्वारों के द्वारा प्ररूपना करते हैं। अभी इनके स्वामी कौन है उसकी बात उन्होंने बता दी, फिर भी इसकी प्ररूपना फिर दोबारा करेंगे। यथा यहां पहले त्रस जीवों का आश्रय करके प्ररूपना करने पर जघन्य स्थान में जीव है, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थान तक ले जाना चाहिए, इस प्रकार प्ररूपना समाप्त हुई। क्या कहना चाहते हैं? ये अनुत्कृष्ट के और वो सबके उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट के स्थान देखे थे, वो त्रसों में, वो जगन्नाथ स्थान त्रसों में हो गए ना, क्योंकि हमने, क्योंकि त्रसों में एक शपक श्रेणी होगी, इसलिए जगन्नाथ स्थान उनमें होते हैं, हो गए बता दिया। उत्कृष्ट स्थान तक सभी उसमें पाए जाएंगे। इस प्रकार प्ररूपणा समाप्त तो हुई। ओग जगन्नाथ स्थान में जगन्नाथ से एक और उत्कर्ष से 108 जीव पाए जाते हैं। सबसे जघन्य जो स्थान है, ये उत्कृष्ट की बात, अनुत्कृष्ट की बात बताई, और इसी में जघन्य सिद्ध किया उन्होंने। अच्छा ठीक है, इसका अर्थ समझ में आता है? ब्रह्मा आप बताना, जघन्य स्थान में कम से कम एक जीव, को अधिक से अधिक 108 जीव, इसका अर्थ क्या है? देखो देखो, एक समय में 108 जीव, यानी आगे, हाँ, 12वें के अंत समय में लेना है ना, 13वें में एंटर हो गए, क्योंकि 6 महीने तक अगर किसी ने नहीं किया तो 8 समय में 608, उसमें से एक समय में उत्कृष्ट संख्या 108 ही हो सकती, उससे ज्यादा नहीं, इसलिए मैक्सिमम ली, मिनिमम एक लिया। इस प्रकार शपक श्रेणी में प्राप्त सभी स्थानों में जीवों का प्रमाण कहना चाहिए, क्योंकि वो तो सभी के लिए वे ही स्थान हो गए, अलग अलग जीवों के अलग अलग स्थान नहीं होते हैं। संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि की जघन्य स्थिति में जीव प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। देखो क्या कहना, अलग अलग जीवों की अपेक्षा बता रहे हैं ना, अब ये कौन सा जीव लिया? संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि, उसकी जघन्य स्थिति कब होगी? सर्व विशुद्ध जीव में, यानी वो अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति, उसमें कितने जीव हो गए? प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। द्वितीय स्थिति में भी वे प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वो संख्या बताई उन्होंने, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीवों के, सब स्थितियों में इतने जीव पाए जाएंगे। अब श्रेणी प्ररूपणा दो प्रकार की है। ये सारी त्रसों के आश्रय से बता रहे हैं, अनंतरोपनिधा और परंपरोपनिधा। उसमें अनंतरोपनिधा की अपेक्षा सातावेदनीय के चतुस्थान बंधक व त्रिस्थान बंधक जीव तथा असातावेदनीय के द्विस्थान बंधक व त्रिस्थान बंधक जीव ज्ञानावरणीय की अपनी अपनी जघन्य स्थिति में स्तोक है, द्वितीय स्थान में उनसे विशेष अधिक है। देखो क्या कहना चाहते हैं, जो जीव ज्ञानावरण बांध रहा है वो साता भी बांध सकता है, असाता भी बांध सकता है, क्योंकि हमने देखा था ना, ये तो पहले गुणस्थान से ऊपर सभी जीवों में तो ज्ञानावरण तो बंध ही रहा है, साता असाता भी बंध रहे जहां यथा योग्य स्थान पर। तो यहाँ तो उसमें अगर यहाँ उनको ये बताना है कि उनमें से जो साता का जो चतुस्थानक बंधक जीव है वो कौन सा जीव लिया? विशुद्ध जीव लिया। चारों स्थान का अर्थ होता क्या होता है? चतुस्थान का अर्थ, हाँ, साता वेदनीय के है ना, गुड़ खांड शर्करा और अमृत, तो उसको कहते हैं चतुस्थानिक बंध। त्रिस्थानिक कैसा है? इतना विशुद्ध नहीं है, थोड़ा कम विशुद्ध है, तो त्रिस्थान शर्करा और अमृत, जो हमने अनुभाग के स्पर्धकों के नाम लिए थे, देखो प्रशस्त प्रकृति ना, अघाती के प्रशस्त में ये चार स्थान पाए जाते हैं। चतुस्थानक यानी वो अमृत वाला जो कर रहा है उसको चतुस्थानक कहेंगे, त्रिस्थान बंधक किसको कहेंगे? गुड़ खांड और शर्करा, हाँ शर्करा तक बांधने, हाँ, तथा असाता वेदनीय के द्विस्थान बंधक और त्रिस्थान बंधक, यानी वो साता असाता ये जो कैसे परिवर्तन होता रहता है उसमें, हाँ, तो उसकी अपेक्षा से इसके संकलेश विशुद्धि बतानी है। तो जीव ज्ञानावरणीय की अपनी अपनी जघन्य स्थिति में स्तोक है। यानी जो मिनिमम स्थिति बनते हैं वहां ज्ञानावरण को, ज्ञानावरण की जो जघन्य स्थिति बनती है उसमें जीव कम है, दूसरे स्थान में ज्यादा है, तीसरे स्थान में ज्यादा, इस तरह से। द्वितीय स्थिति में उनसे विशेष अधिक है। कितने प्रमाण से अधिक है? तो कहते पल्योपम के असंख्यात पे भाग से खंडित करने पर उनमें से वे एक, यहां एक वाक्य डालना, उनमें से वे एक, एक के बाद वाक्य डालना, एक पूरा नीचे ले लो, उनमें से एक, नहीं यो मध्य के पहले, उनमें से एक खंड प्रमाण है, नीचे लिखो, फुटनोट में लिखो, हाँ, उसमें से एक खंड प्रमाण है लिखा, बाद में फुल स्टॉप दे दो, फिर लिखना तृतीय स्थिति में क्या
ये वाक्य नहीं है,
हाँ वो एक्स्ट्रा डालना है। खंड प्रमाण है लिखा, फुल स्टॉप दे दो, फिर तृतीय स्थिति में जीव विशेष अधिक है, फुल स्टॉप, इस तरह। अब आगे क्या हुआ, यव मध्य लिखा है वहां तो चालू रखना, इसके लिए ऊपर प्रूफ है, देखो प्राकृत में चौथे मिल लाइन में क्या लिखा है, हाँ पलिद, ऊपर से चौथी लाइन, पलिदो में से असंख्य यदि भागे न खंडी देगा एक खंड में इतना, हाँ उसके बाद तदीया यानी तृतीय स्थिति जीवा विशेषाया एवं, यानी इस तरह। आगे का वाक्य हिंदी में है, स्थिति में जीव विशेष अधिक है, इस तरह, विशेष अधिक के बाद फुल स्टॉप, इस तरह। अब आगे बढ़ेंगे, इस तरह यव मध्य तक विशेष अधिक होते गए हैं। अब यहां जीवों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ जीव। अभी ज्ञानावरण की जो जघन्य स्थिति बांधने वाले जीव कम है, उससे एक समय अधिक वाले थोड़े ज्यादा है, थोड़े ज्यादा है, ये जीवों की संख्या बताते यव मध्य तक। फिर क्या होगा, फिर घटते चले जाएंगे, इसको कहते हैं यव मध्य। यहाँ मिनिमम, यहाँ ज्ञानावरण की स्थिति बता रहे, जघन्य स्थिति बांधने वाले कम है, मध्यम स्थिति बांधने वाले बढ़ते चले गए, ऊपर और घटते चले गए, कि यव मध्य तक विशेष अधिक हो गए, उसके आगे वे विशेषहीन है। इस प्रकार सागरोपम शतपृथक्त्व स्थिति तक वे विशेषहीन विशेषहीन है। सागरोपम शतपृथक्त्व का अर्थ क्या है, शत सागर यानी सौ सागर और पृथक्त्व यानी कुछ सौ सागर, क्योंकि त्रसों में देख रहे हैं ना हम, तो विशेषहीन विशेषहीन होते हैं। ये हर एक के अपने अपने अलग देखना, ये कथन ये कहां तक हो गया, ये सागरोपम शतपृथक्त्व यानी कुछ सौ सागर यानी 900 सागर ले लो ना समझने के लिए, 900 और 1000 सागर तक है इसे सागरोपम शतपृथक्त्व। अब कहते हैं देखो साता वेदनी के द्विस्थान, ये हमने कौन से देखे थे, सातना साता के चतुस्थान में यही कथन होगा, साता के त्रिस्थान में ऐसा ही कथन होगा, असाता के द्विस्थान में ऐसा ही होगा, असाता के त्रिस्थान में ऐसा ही होगा। अब साता के द्विस्थान यानी द्विस्थान साता है, और असाता के चतुस्थान यानी संकलेश परिणाम वाला जीव है, जीव ज्ञानावरण की जघन्य स्थिति में स्तोक है, द्वितीय स्थिति में उनसे विशेष अधिक है, तृतीय समय में नहीं है, तृतीय स्थिति में चाहिए, उनसे विशेष अधिक जीव है। स्थिति करना, समय की जगह स्थिति लिखना। इस प्रकार सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति तक वे उत्तरोत्तर विशेष अधिक है। इससे आगे की स्थिति में उत्तरोत्तर विशेषहीन है। इस प्रकार साता व असाता वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति तक विशेषहीन विशेषहीन है। इस प्रकार अनंत रूप निधा समाप्त हुई। अब यही रुकेंगे हम, परम्परोपनिधा फिर पढ़ेंगे, तब थोड़ा रिवीजन करके बढ़ेंगे आगे, क्योंकि अभी हमें मिलना है 17 तारीख को, देवलाली शिविर में जाना है ना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं